चैप्टर 11। अब आगे सुमन जी जैसे ही पूछती हैं कि परी और दिशा कहाँ है, वैसे ही अर्जुन के कान खड़े हो जाते हैं और वे तुरंत बोला, मॉम, रूही तो दिशा दी को पूरा घर दिखाने ले गई है। सुमन जैसे ही अर्जुन की बात सुनती है, वैसे ही उस पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को उन दोनों के साथ नहीं जाना चाहिए था। अगर गलती से वे लोग पांचवें फ्लोर पर या रुद्र के कमरे में चली गई, तो तुम लोग जानते हो ना रुद्र कैसा है। उसने अगर उन बच्चियों के साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं क्या करूंगी? उन बच्चियों से किस मुंह से माफी मांगूंगी? सुमन की बात सुनकर परी बोली, मॉम, रूही को मैंने पहले ही बता रखा है कि उसे पांचवें फ्लोर पर कभी भी गलती से भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां हमारा शैतान भाई रहता है जो किसी को भी अपने फ्लोर पर देख पागल हो जाता है। मैंने उसे भाई के बारे में बहुत कुछ बता रखा है, वे खुद भाई से काफी डरती है। तो माँ, आप चिंता मत कीजिए, रूही गलती से भी पांचवें फ्लोर पर जाने की गलती से भी नहीं करेगी। परी की बात सुनकर सुमन थोड़ा चैन की सांस लेती है, फिर दोनों को देखते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन अब तुम दोनों जाओ और उन्हें ढूंढ कर लाओ। वैसे भी डिनर का टाइम हो गया है और उन्हें वापस अनाथ आश्रम भी तो जाना है। सुमन जी की बात पर परी और अर्जुन हामी भरते हुए रूही और दिशा को ढूंढने चले जाते हैं। वहीं कामना ये सब देख अपना मुंह बनाते हुए बोली, भाभी, आप क्यों उस गरीब लड़कियों की इतनी चिंता करती हैं? आपने मेरे दोनों बच्चों को उन गरीबों के पीछे लगाकर रखा हुआ है। पता नहीं आपको उन गरीबों से इतना लगाव क्यों है? मेरी बात मानिए भाभी, एक अमीर लड़की देख अपने बेटे की शादी कर दीजिए, वरना ये गरीब लड़कियां आपकी बेटों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर कब इस घर की महारानी बन जाएंगी, ये बात आपको खुद पता नहीं चलेगा। कामना की बात पर सुमन हल्का मुस्कुराते हुए बोली, दी, रूही और दिशा वैसी लड़कियां नहीं हैं जैसा आप समझ रही हैं। उन्हें हमारे पैसों से कोई मतलब नहीं है। वे दोनों काफी स्वाभिमानी लड़कियां हैं। वे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगी जो सही ना हो। मैं तो खुद चाहती हूँ कि रूही मेरे घर की बहू बने। उसकी जैसी सुंदर और प्यारी बहू पाकर तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। सुमन की बात पर कामना की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वे थोड़ा गुस्से में बोली, भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप उस दो कौड़ी की गवार लड़की को इस घर की बहू बनाने के सपने देख रही हैं। कामना की बात सुनकर सुमन जी भी थोड़ा गुस्से में बोली, दीदी, प्लीज, आप रूही के बारे में कुछ भी मत बोलिए। मैं रूही के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। वैसे भी मुझे और मेरे बेटे अर्जुन, हम दोनों को रूही काफी पसंद है। बस हमें रूही के हाँ कहने का इंतजार है। उसके बाद मैं तुरंत उन दोनों की शादी करवा दूंगी। सुमन की बात सुनकर कामना सोफे के उठते हुए बोली, दीदी, आपकी जैसी मर्जी, पर मैं पहले ही बता दूं, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। इतना बोल वे अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सुमन कामना की बात को इग्नोर कर किचन में डिनर की सारी तैयारियां देखने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के कमरे में रूही जैसे ही बोलती है कि उसे उसकी पागलों जैसी अब कोई बात नहीं सुननी, वैसे ही रुद्र रूही का हाथ पकड़ सीधा उसे बाथरूम में ले आता है। अभी रूही कुछ समझ पाती कि ये इंसान उसे बाथरूम में क्यों लाया और वे उसके क्या चाहता है, तभी उसे ठंड का एहसास होने लगता है, क्योंकि रुद्र ने रूही को शावर के नीचे खड़ा किया हुआ था। फिर शावर ऑन कर रूही के करीब बढ़ने लगता है, जिसे देख रूही काफी ज्यादा घबरा जाती है और पीछे होते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने शावर क्यों ऑन किया? मुझे ठंड लग रही है, इसलिए इसे बंद करो। तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो? देखो, तुम्हें जो कहना है दूर से कहो, मेरे करीब आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये सब कहते कहते रूही दीवार से टकरा जाती है। अब उसके पास पीछे जाने का कोई और रास्ता नहीं था। वहीं रूही जब देखती है कि उसके पास और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है और रुद्र उसके करीब पहुंच चुका है और वे उसके और करीब आता जा रहा है, जिसे देख रूही तुरंत दूसरी तरफ जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, वैसे ही उसे अपने सामने एक मजबूत हाथ दिखाई देता है, जिसे देख रूही के हाथ उसके कपड़े पर कस जाते हैं। वे जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ जाने लगती है, मगर उस तरफ भी रुद्र अपने हाथ रख देता है और रूही के करीब आते हुए बोला, माई इनोसेंट गर्ल, डोंट मूव। अब चुपचाप जैसी हो वैसी ही खड़ी रहो, क्योंकि जितना तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, उतनी ही तुम्हारी पनिशमेंट बढ़ती चली जाएगी। इतना बोल वे रूही के गालों पर हाथ रख उसे अपने अंगूठे से तेजी से रगड़ने लगता है, जिसके रूही को काफी दर्द होने लगता है और वे रुद्र को खुद को छुड़वाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। रूही की बात सुनकर रुद्र के हाथ रुक जाते हैं और वे रूही को देखते हुए बोला, मेरी रूह को दर्द हो रहा है, पर रूह मेरे दर्द का क्या, जब तुम खुशी खुशी इन खूबसूरत गालों पर सबको किस करने दे रही थी। फिर रूही के होठों पर उंगली रख, मेरा क्या रूह, जब तुम इन खूबसूरत होठों से किसी दूसरे इंसान को किस कर रही थी। फिर रूही के चेहरे को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरा क्या रूह, जब तुम उन छोटे छोटे कपड़ों को पहन सबको दिखा रही थी। पता नहीं कितनों ने तुम्हारे उस खूबसूरत रूप को देखा होगा, कितनों ने तुम्हारे खूबसूरत पैरों को देखा होगा, जिसे देखने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। फिर रूही को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में उसे वार्निंग देते हुए बोला, रूह, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई तुम्हें उस तरह से देखे। तो आज के बाद गलती से भी तुमने उस तरह से कपड़े पहने या आपने इन खूबसूरत होठों से किसी और को छुआ तो मैं तुम्हारी वे हालत करूंगा जिसका अंदाजा तुम्हें सपने में भी नहीं होगा। रुद्र की बात सुनकर रूही को काफी ज्यादा डर लग रहा था, फिर भी वे रुद्र को देखते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब बोलने वाले? मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा करूंगी। मेरा जिस तरीके का कपड़ा पहनने का मन करेगा मैं वैसा ही पहनूंगी। ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ खुलकर जीना पसंद करती हूँ, ना कि किसी की कठपुतली बनकर। रूही की बात सुनकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं बल्कि ये खतरनाक हंसी थी। वहीं दूसरी तरफ देवांश के कमरे में, वहीं दिशा जैसे ही फाइल उठा खड़ा होते हुए मुड़ती है वैसे ही वे सीधा देवांश के खुले सीने से टकरा जाती है और डर की वजह से वे जल्दी से उसके कंधे को पकड़ लेती है। वहीं देवांश भी दिशा की कमर को मजबूती से पकड़ उसे खुद के करीब खींच लेता है।
वे दिशा को अपने इतने करीब उसके एहसासों में खो जाता है और अपना चेहरा दिशा के बालों में ले जाकर उसकी खुशबू को सूंघने लगता है। उसे इस वक्त काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था क्योंकि वे दिशा के करीब इस तरह काफी कम ही आ पाता था, क्योंकि दिशा हमेशा उससे दूर दूर ही भागती थी। वे उसे अपने करीब आने का एक मौका भी नहीं देती थी।